नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद राजधानी ढाका में हिंसा भड़की। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अपनी सैन्य और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अरबों यूरो के ऋण की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारिजुआना को कम खतरनाक श्रेणी में रखने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से और पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान की दो दिन की यात्रा कल संपन्न हो गई। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत किया। दोनों पक्षों ने भारत ओमान संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और इसे एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने मस्कत में ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाही महल में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें ओमान ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि सुल्तान द्वारा दी जाने वाली विशेष नागरिक मान्यता है। ये पुरस्कार उन्हें भारत ओमान संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। श्री मोदी ने भी विभिन्न भाषाओं में भारतीय भाईचारे को शुभकामनाएं दी और उनकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति को मिनी इंडिया कहा। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा और कई क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत और ओमान के औद्योगिक नेताओं वाले एक व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत ओमान एग्री इनोवेशन हब और भारत ओमान इनोवेशन ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा, ताकि व्यापार साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने सभी प्रकार और रूपों में आतंकवाद की निंदा की और दोहराया कि ऐसे कृत्यों के लिए कोई भी औचित्य कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों ने गाजा में मानवीय स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और नागरिकों तथा मानवीय सहायता की सुरक्षित और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मस्कत ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली।
इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें भी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष क्षेत्र के माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण पहलू का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आयुष मार्क का भी अनावरण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयुष मार्क को आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक के रूप में तैयार किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और आयुष में 11 वर्षों के परिवर्तन पर पुस्तक जड़ों से वैश्विक पहुंच तक का विमोचन करेंगे। वे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे वर्ष 2021 से 2025 के लिए योग के संवर्धन एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा खोज केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो भारत और विश्व भर की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय है संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में हमलावरों ने गोली मार दी थी। एक रिपोर्ट।
सिंगापुर में इलाज के दौरान छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। हादी को पिछले ही सप्ताह ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और सिंगापुर में इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र द डेली स्टार और प्रथम आलोक के कार्यालय में तोड़फोड़ की और एक इमारत में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने चट्टोग्राम में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमला कर दिया, जिससे राजनयिक परिसर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना आज तड़के हुई जब आक्रोशित भीड़ आवास के बाहर जमा हो गई और पत्थर फेंकने लगी, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और इलाके में दहशत फैल गई। चट्टोग्राम में कल रात से ही तनाव बढ़ रहा था जब उपद्रवियों ने भारतीय सहायक उच्च आयोग के आवास के पास पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से $1,000,000,000 की आर्थिक मदद और सैन्य सहायता की मांग की है। रूस की 245 अरब अमरीकी डॉलर की संपत्तियां बेल्जियम के यूरोक्लियर संगठन के पास हैं। रूस की जब्त संपत्तियों के उपयोग पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रसल्स में आयोजित किया जा रहा है। बेल्जियम और कुछ अन्य सदस्य देशों ने क्षतिपूर्ति के रूप में इस धनराशि का उपयोग करने का विरोध किया है। इस बीच रूस ने अपनी धनराशि वापस पाने के लिए मॉस्को की एक अदालत में यूरोक्लियर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने वादा किया है कि वह बिना किसी समाधान के शिखर सम्मेलन से नहीं लौटेंगी। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता जल्द हो सकता है। अमरीकी और रूस के अधिकारी इस सप्ताहांत मियामी में शांति योजना पर बातचीत करने वाले हैं। रूस ने अभी तक शांति प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारियो जुआना को कम खतरनाक श्रेणी में रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में मादक पदार्थों और अन्य रासायनिक पदार्थों का 5-स्तरीय वर्गीकरण किया गया है। इससे पहले मारिजुआना को पहली श्रेणी में रखा गया था, जहां इसे हेरोइन और LSD जैसे मादक पदार्थों के साथ रखा गया था। अब नए आदेश के साथ इसे तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा, जहां ये केटामाइन और एनाबॉलिक स्टेरॉयड के साथ होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है ये परिवर्तन मारिजुआना का वैधीकरण नहीं है। इस परिवर्तन से मारिजुआना पर शोध करना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के मुरीद के सैन्य हवाई अड्डे का उपग्रह से मिली तस्वीरों के अनुसार मरम्मत का काम चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 10 सैन्य हवाई अड्डों के साथ इसको भी निशाना बनाया था। ये सैन्य हवाई अड्डा पाकिस्तानी वायुसेना के मानव रहित हवाई वाहनों का प्रमुख केंद्र है। टिकटॉक की मालिक चीन की कंपनी बाइट डांस ने 3 प्रमुख निवेशकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत कंपनी की 80% से अधिक अमरीकी संपत्ति ओरेकल, सिल्वरलेक और MGX सहित अमरीकी और वैश्विक निवेशकों को बेची जाएगी। ये तीनों निवेशक मिलकर नई इकाई में 45% हिस्सेदारी रखेंगे। इससे टिकटॉक USDS ज्वाइंट वेंचर LLC नामक एक नया टिकटॉक US संयुक्त उद्यम बनेगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 315 रन से हराया था। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता में 2-1 से आगे है। बुधवार को लखनऊ में चौथा T20 मैच कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था। और झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में कल झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया। झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए। कप्तान ईशान किशन ने 101 रन और कुमार कुशाग्र ने 81 रन की पारी खेली। जवाब में हरियाणा की टीम केवल 193 रन ही बना सकी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन की सफल यात्रा सम्पन्न। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद राजधानी ढाका में हिंसा भड़की। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अपनी सैन्य और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अरबों यूरो के ऋण की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारिजुआना को कम खतरनाक श्रेणी में रखने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा, वहीं पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।